आज जो हम कलामे पाक की तलावत करेंगे उसमें मैं चाहूंगा कि आप अपनी तवज्जो इस तरफ लगाएं ध्यान से, ताकि हम कुछ खुदा के कलाम से सीख सकें। आज की पहली तलावत है यसाया नबी का सहीफा, उसका 51 बाप, उसकी 17 आयत। यूं मरकूम है कलामे पाक में, जाग उठ है यरूशलम, तूने खुदावंत के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया, तूने डगमगाने का जाम तलछट समेत पी लिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीजो, आज का कलाम हमें खुदावंद की सच्चाई से वाकिफ करता है, हमें खुदावंद की सच्चाई से वाकिफ करता है। आज का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। और अगर हम देखें, यही यसाया नबी का सहीफा, उसका 52 बाप और उसकी पहली 2 आयात। यसाया नबी का सहीफा, उसका 52 बाप, उसकी पहली 2 आयात। जाग ऐ सहून, अपनी शफकत से मुलबस हो, ऐ यरूशलम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठ कर बैठ, ऐ यरूशलम, ऐ असीरे दुख्तर सहून, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल। आमीन। अजीजो, हम देखते हैं कि कलामे पाक हमें इस सच्चाई से आशना करता है। कलामे पाक हमें सच्चाई के मुतल्लक बताता है, जो कि खुदा के कलाम की सच्चाई है। और खुदा के कलाम की सच्चाई हमें आजाद करती है। आप लोग जो यहां मौजूद हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, शुक्र करें इस वक्त के लिए शुक्र करें कि आप यहां मौजूद हैं और आपके पास वक्त है। अगर आप खुदा के घर में जाते हैं, वहां कलाम सुनते हैं, घर में खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ही घरों के अंदर, हमारे अपने ही अजीजो कर्ब अपनी अपनी दुनिया में गुम हैं, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में मगन हैं, जिनके पास खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो खुदा के घर में आए, लेकिन दुनियावी तौर पे वो जितने मर्जी मसरूफ हों, लेकिन वो बेकार जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल बेकार जिंदगी गुजार रहे हैं। और कलामे मुकद्दस के मुताबिक जो खुदा के हजूर में आता है, खुदा के कदमों में आता है, वो इज्जतदार हो जाता है, वो दौलतमंद हो जाता है। यानी अगर हमें इज्जत और दौलत चाहिए तो हमें खुदा के कदमों में आना है। अगर हम देखें मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत, तो यहां पे मरकूम है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले, और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। गौर करें जरा, करना क्या है कि इस कलामे मुकद्दस को पढ़ना है सिर्फ, और चर्च में जाके सुनना है खादमाने दीन के साथ, और इज्जतदार हो जाना है। दौलत की कमी नहीं है, रुतबे की कमी नहीं रहेगी। और अगर हम देखें कि खुदावंद का कलाम हमें खुदा के करीब ले आता है, क्योंकि कलाम की जितनी भी आयात हैं ये इंसान की जिंदगी को तब्दील करने के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं, क्योंकि रूह और सच्चाई से लिखी गई हैं, पाकरू की तहकीर से लिखी गई हैं। और जो लोग कलामे मुकद्दस का मुतालिया करते हैं वो जानते हैं कि उनको ज़हनी सुकून है, उनको कोई घरेलू परेशानी नहीं, और अगर आ भी जाए तो पाकलाम में इतनी ताकत है कि वो खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा यसाया 51 बाब उसकी 17 आयत, जाग जाग। और इसी तरह हमने यसाया 52 बाब पढ़ा, जाग जाग। यानी यहां पे हम देखते हैं कि 2 दफा कहा गया है जाग जाग। इसका मतलब है कि पहले हम सो रहे हैं, पहले हम जाग नहीं रहे थे, सो रहे थे, और कलामे पाक हमें जगा रहा है। ऐ यरूशलम के मुकद्दस शहर, अपनी खुशी का लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून नापाक तुझ में दाखिल नहीं होगा। अजीजो, हमारे जिस्म के अंदर देखते ही देखते नापाक ख्यालात आ जाते हैं, बुरी सोचें आ जाती हैं, दाखिल हो जाती हैं, जो कि हमें खुदा से बहुत दूर ले जाती हैं। پھر ہم ناپاک محفلوں میں چلے جاتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر تو جاگ گیا ہے، اگر تو جاگ گیا ہے، جاگ، اٹھ اور بیٹھ، یعنی اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑ دے، مکمل حالت بتا دی گئی ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے یہ سارا کچھ؟ سہون اور یروشلم، یعنی کلیسیا، اور وہ بھی چنی ہوئی کلیسیا خدا باپ کی۔ اور اگر ہم زبور 4 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے الگ کیے ہوئے، چنے ہوئے۔ یہ ہے بیداری کا کلام، یہ کلام ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم اپنے اپنی ڈیوٹی کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اپنے اپنی ڈیوٹی کی طرف، اور شام ہوتے ہی واپس جب آتے ہیں گھروں کو تو کہتے ہیں او بہت تھک گیا ہوں میں، اوف بہت تھک گیا ہوں۔ اور وہ لوگ جو کوئی کام کاج نہیں کرتے، گھروں میں رہتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ چرچز میں جا سکیں، خدا کے مقدس کلام کو پڑھ سکیں، وہ صرف اور صرف ہر وقت دنیاوی خواہشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ خداوند کے اس کلام کی طرف سے سوئے ہوئے ہیں، مگر ان کو تلاش ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں؟ دولت کی، روپے پیسے کی۔ اور کلام مقدس ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ جاگو، جاگو، ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، جاگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جب ہم جاگ ہی نہیں رہے، سو رہے ہیں، تو ہمیں فکر کس چیز کی ہے؟ ہمارے اوپر گرد پڑ چکی ہے، پریشانیاں، دولت کی کمی، بے برکتی، کسی قسم کی برکت نہیں ہے گھر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں، گرد پڑ چکی ہے ہم پہ۔ اور خداوند فرماتے ہیں اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑ دے اور اٹھ کر بیٹھ جا، یعنی خداوند کے حضور صاف ستھرا ہو کر، صاف ستھرا ہو کر بیٹھنا ہے۔ جب آپ خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، جب آپ بائبل کی سٹڈی کے لیے بیٹھتے ہیں، دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ہمیں گرد جھاڑ کے بیٹھنا ہے، صاف ستھرا ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور یہ گرد ये गर्द हमारे दिमागों पे पड़ चुकी है, बंद हो चुके हैं हमारे दिमाग। और बाज लोग तो इतने गर्द में लिपटे होते हैं कि वो चर्च में चले भी जाएं तो उनके दिमाग जो बंद हो चुके हुए हैं वो चर्च में बैठे बैठे सो जाते हैं। उनका ध्यान नहीं है कि हम खुदा के कदमों में आए हैं, उनका ध्यान नहीं है कि हम यहां आए हैं तो कुछ लेके जाएं, सो रहे हैं। और अगर हम देखें जबूर 39 उसकी 6 आयत, दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है, यकीनन आपने गौर किया होगा कि अक्सरियत जो लोगों की है वो ऐसे फजूल घबराई हुई है, ऐसे खामखा अपने सर के ऊपर उन्होंने टेंशन ले रखी है। यकीनन वो जहीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन खाएगा। यानी खुदावंत का कलाम हमें जगा रहा है, उठा रहा है कि हम अपने ऊपर से गर्द को झाड़ दें। गर्द कौन सी है हमारे ऊपर? अब्लीस ने हमारे जहनों को बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है हमें, ताकि किसी रिश्ते की पहचान ना रहे। कहीं सुबह उठकर और शाम को खुदा का कलाम पाक पढ़ ना सके। खुदावंत का कलाम हमें कह रहा है, आवाज दे रहा है, उठ कर बैठ और अपने ऊपर से गर्द को झाड़ दे। अजीजो, इसका मतलब है जो आपने अक्सर देखा होगा, आपका तजर्बा होगा जिंदगी का, कि आप कोयले को जलाते हैं तो जब आप कोयला जला लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर गर्द राख आना शुरू हो जाती है। अंदर से वो कोयला जल रहा है लेकिन ऊपर उसके गर्द आ चुकी है, राख आ चुकी है। यानी खुदावंत का कलाम हमें जगा रहा है। शायद हम अंदर से मजबूत हैं, मजबूत मसीही हैं, लेकिन हमारे ऊपर हालात की गर्द आ चुकी है। लेकिन आपका तजर्बा होगा कि जब आप कोयले को फूंक मारते हैं, झाड़ते हैं उसको, तो वो फिर वो कोयला जो है वो आग बन जाता है। और अगर आप उसके साथ और कोयले रख देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कोयले जल जाएंगे, उनमें आग भड़क उठेगी, तपश पैदा करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि हम बुझे हुए कोयला ना बने। अगर हमारे ऊपर हालात की मजबूरी आ चुकी है, हालात ने हमें नीचे गिरा दिया है, तो हमें ऊपर से गर्द हटानी है, जागना है, बेदार होना है, ताकि हमारे जरिए हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब वो भी जाग जाएं, वो भी कलाम की तरफ आ जाएं, वो भी खुदा के कलाम को सुने और एक मजबूत ग्रुप बन जाए, मजबूत ग्रुप बन जाए जो खुदा के साथ चले। और फिर बहुत सी प्यासी रुएं शेरों से। अजीजो, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद का कलाम कह रहा है, जाग, अपने ऊपर से गर्द को झाड़ दे, खुदा के खादमों के साथ अपना ताल्लुक बनाए, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो कि खुदा के चुने हुए लोग हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक बनाए, खुदा के खादमों को अपने घरों के अंदर बुलाएं, खुद चर्चिज में जाएं। अगर आप अपने घर को देखें, गौर करें जरा, कितनी देर हो गई है, कितने महीने साल हो गए हैं आपने खुदा के खादम को, किसी पादरी को अपने घर में दावत नहीं दी है कि वो आए और वहां पे खुदा का नाम ले, मसा करे उस घर को। याद करें जरा, बहुत देर हो चुकी है। ये मत सोचें, साफ कहते भाई साहब को, भाई साहब हमारे पास चंदा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। बाज लोग इसी झिझक में रहते हैं। नहीं दोस्तों, वो खादिम है, उसका काम है आपके पास आना, आपको शेयर करना खुदावंद के कलाम से। लेकिन उसको बुलाएं जरूर अपने घर में, मसा जरूर लें उससे। आज घरों के अंदर दुआ खत्म हो रही है, बाइबल पढ़ने की आवाज कम गूंज रही है घरों के अंदर, इसलिए शैतान ने डेरे लगा लिए हैं घरों के अंदर। खानदान एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। क्यों? इसलिए घर में पाखरू का मसा नहीं है, गर्द जम चुकी है घरों के अंदर, जहनों के अंदर, ख्यालों में, सोचों में नफरत भर चुकी है। अजीजो, क्योंकि कलामे मुकद्दस हमें करीब आने का मौका देता है। अगर हम किसी वजह से खुदा से दूर चले गए हैं, आसमानी बाप से दूर चले गए हैं, तो हमें उसकी तरफ लौटना है। और कलामे मुकद्दस में आपने एक तमसील सुनी होगी, जिसको हम कहते हैं मुसरफ बेटे की कहानी। अब देखते हैं कि मुसरफ बेटा जो था, उसका बाप अमीर आदमी था, लेकिन शैतान ने जब छोटे बेटे को घेरा, उसके दिमाग को पकड़ा, तो उसने अपने बाप से मुतालबा कर दिया कि मुझे मेरा हिस्सा, जायदाद का जो हिस्सा है वो दे दे। और जो छोटा बेटा होता है वो अपना हिस्सा लेता है, चला जाता है। जब वो जाता है तो क्या होता है? वो गलत महफल में चला जाता है, गलत लोगों के हाथों में चला जाता है, अपना रुपया पैसा, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। गौर करें जरा, غور کریں ذرا، اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ کی جو بھی آمدنی ہے، جو بھی کمائی ہے آپ کی، وہ آپ کماتے ضرور ہیں لیکن غلط ہاتھوں میں جا رہی ہے، آپ کے دوست غلط ہیں، آپ کے وہ ملنے جلنے والے غلط ہیں جہاں پر روپیا اڑا رہے ہیں، آخر کیا ہوتا ہے کہ مصرف بیٹے کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ دیکھتا ہے اب تو میں بہت غریب ہو گیا ہوں، اجڑ گیا ہوں میں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کے پاس چلا جاتا ہے جس کے سور ہوتے ہیں، اور وہ سوروں کو ان کے نگہبانی شروع کر دیتا ہے، چرانا شروع کر دیتا ان کو، اور سور جو ہوتا ہے یہ گندگی کی علامت ہے، گند میں رہتا ہے، اور وہ پھلیاں کھاتا ہے جو سور کھاتے ہیں۔ عزیزو، آخر میں اسے خیال آتا ہے کہ میں اب اس کا بیٹا تو نہیں رہا کیونکہ میں نے بغاوت کر دی اور میں آ گیا ہوں گھر سے باہر، لیکن چاہتا ہوں اپنے باپ کے پاس، اور اسے کہوں گا کہ مجھے نوکر ہی رکھ لے۔ آخر وہ آتا ہے اور اس کا باپ ہی ہوتا ہے، اس کا باپ باہیں پھیلائے ہوئے اس کا استقبال کرتا ہے، ویلکم کہتا ہے، اس کو خوشی کرتا ہے، پلے ہوئے بچھڑے اس کے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی دنیاوی عیاشیوں میں، دنیاوی کاموں میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے، کھو گئے ہیں اپنی دنیاوی دنیا میں۔ غیر مہذب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو گیا ہے، کلام کی طرف نہیں آتے، دعا کی طرف نہیں آتے، پاسٹر کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، کیوں؟ گرد جم چکی ہے ہم پہ، لیکن خداوند کی طرف لوٹنا ہے ہمیں۔ وہ باہیں پھیلائے ہوئے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ عزیز، اٹھ کر بیٹھ جائیں، آج آپ جہاں بھی ہیں اٹھ کر بیٹھ جائیں اور خداوند کی طرف آ جائیں، قبول کریں خداوند کو آج کے دن، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے یوحنا رسول کی انجیل میں، جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ عزیزو، ضرورت ہے جاگنے کی، ضرورت ہے بیدار ہونے کی، ضرورت ہے اٹھنے کی، صرف اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑنا ہے، مٹی کو جھاڑنا ہے، اپنے گندے خیالوں کو، گندی سوچوں کو، گندے ارادوں کو اٹھا پھینکنا ہے دور، اور یسوع کے قدموں میں آ جانا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 2:16-17، تو وہاں مرکوم ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہی، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ غور کریں ذرا، دنیا میں جو کچھ ہے، جسم کی خواہشیں ہیں، آنکھوں کی خواہشیں ہیں، کسی دوسری کے گاڑی کو دیکھ کے، دوسرے کے گھر کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی انجدا ہوئے، اور جسم کی خواہشیں، خام خام نے جسم کو جہنم بنا لیا ہوا ہے، سوچتے نہیں ہیں. ہر بری عادت، بری بات، بری سوچ ہم نے اپنے جسم کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ باندھ رکھی ہے، اور جسم کی خواہشیں جہنم میں لے جاتی ہیں عزیزو. بلکہ دنیا کی طرف سے ہیں. یہیں دیکھیں، یہ جتنی بھی خواہشیں ہیں باپ کی طرف سے نہیں ہیں، دنیا کی طرف سے ہیں، اور دنیا فانی ہے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں مسافر ہیں. تھوڑی دیر کا ہمارا بسنا ہے یہاں پہ. ہمیں اپنی آخرت کے لیے فکر کرنا ہے عزیزو. دنیا کی خواہشیں، جسم کی خواہشیں یہ مٹ جائیں گی، لیکن بچے گا وہی، خدا کی بادشاہی میں وہی داخل ہوگا جو اس کی مرضی پہ چلے گا، جو اس کے احکامات کو مانے گا، جو کلام پاک کو پڑھے گا، جو دعا کی طرف آئے گا، جو خادمان دین سے رفاقت رکھے گا. اس سے پہلے دنیا میں بہت سے لوگ آئے، میرے اور آپ سے پہلے بہت سے لوگ آئے جو عظیم لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی جسمانی خواہشوں کو اہمیت نہیں دی، آنکھوں کی خواہشوں کے تابع دار نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزاری ہے. ان کے بھی خاندان تھے، ان کی بھی دنیا تھی، ان کی بھی دوستیاں تھی، لیکن انہوں نے دنیا کے ساتھ تابع داری نہیں کی، خدا کی تابع داری کی ہے. انہوں نے خدا کو معتبر جانا ہے. آج دنیا جبکہ وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں، کوئی ان کو اچھا آدمی کہہ رہی ہے، کوئی ان کو پیغمبر کہہ رہی ہے، کوئی رسول کہہ رہا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی کہہ رہا ہے، کوئی خدا کا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ اچھے لوگ تھے عزیزو. اچھا یا برا، یہ ہمارے بس میں ہے. ہم جو کچھ بھی بننا چاہیں اچھا یا برا بن سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا کہ ہم اصل میں ہیں کیا. اور جب ہم سوچیں گے کہ تنہائی میں یار مجھ میں تو یہ والی پرابلم ہے، یہ بری بات ہے، یہ اچھا نہیں ہے مجھ میں، اگر ہم ان سے نظر چرائیں گے تو ہم برے لوگوں میں آ جائیں گے، اور اگر ہم ان کو درست کریں گے، اچھا عمل کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، ہمارے مال اچھے ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، اور وہ لوگ جو ہم سے دور چلے گئے، بچھڑ گئے، آج ہم ان میں سے کچھ کو اچھا کہتے ہیں، کچھ کو برا کہتے ہیں. جن کو اچھا کہتے ہیں دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اور جن کو برا کہتے ہیں کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے. آج بھی گھروں کے اندر ہم سب زیر بحث آتے ہیں، ہمارے متعلق باتیں کرتے ہیں، ہمارے متعلق رائے رکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم خدا کے تابع دار ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے متعلق گفتگو کی جاتی ہے گھروں کے اندر، لوگ ہمیں جج کرتے ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کریں، لیکن لوگ ہمیں جج کرتے ہیں عزیزو. ضرورت ہے कि अपने आप को ठीक कर लें, खुदा के कदमों में आ जाएं, जाग जाएं। ना सिर्फ जागना है, उठ के बैठना भी है और अपने ऊपर से गर्द को भी झाड़ना है, गुनाहों की गर्द, लालच की गर्द, इसी तरह और बुरी बातों की गर्द हमारे ऊपर जम चुकी है, हमारे जहन बंद हो चुके हैं। उतार फेंके इन चीजों को और यीशु की तरफ आ जाएं। उसी में हमारी बचत है, उसी में हमारी बेहतरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस मुसरफ बेटे के बाप की तरह हमारे लिए भी बाजू फैलाए खड़े हैं कि कब गुनाहगार तौबा करे, कब गुनाहगार को एहसास हो तो वो मेरी तरफ लौटे और मैं उसके लिए वो बंद दरवाजे खोल दूं, वो बरकतें खोल दूं जो उसके गुनाहों की वजह से, जो उसकी अपनी हरकतों की वजह से बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुकी हैं। खुदावंद हमारा इंतजार कर रहा है, हमें जागने की जरूरत है, गर्द उठा फेंकने की जरूरत है, हमें आज खुदावंद की तरफ आना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है, अपनी राहों को देखना है, अपनी सोचों को देखना है, अपने ख्यालों को देखना है, तभी हम खुदावंद की तरफ लौट सकते हैं। झूठी अना, झूठा तकबर, झूठी इज्जत ये हमने बना रखी है नहीं है। अजीजो, जिस्म की ख्वाहिशों को, आंखों की ख्वाहिशों को, दुनियावी ख्वाहिशों को खत्म कर दें आज। अब इन आंखों को पाखरू की तरफ लगा लें ताकि हमें पाखरू नजर आए, सहत लहजे नरम कर लें। बहुत लोगों को नाराज कर लिया आपने, बहुत दुख दे दिए लोगों को, बहुत बातें कर ली लोगों के लिए। अब लहजे नरम कर लें, आंखें नीची कर लें, एहतराम ले आए आंखों के अंदर इस रिश्तों का, और अपने अलावा जो हमने ये आदत बना रखी है ना कि हर किसी को बुरा कहना है, ये आदत छोड़ दें। अगर गौर करेंगे तो अपना आप ज्यादा बुरा होता है और क्या हम दूसरों को रहे होते हैं। अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता, दूसरे का तिनका नजर आ रहा होता है। मैं अजीजों, छोड़ दें इस बात को और खुदा की तरफ लौट आएं, अबादात की तरफ लौट आएं, दुआ की तरफ लौट आएं, हलीम और फरोतन बन जाएं, हलीम और फरोतन बन जाएं। हमारे उठने से, बैठने से, चलने फिरने से पता चले कि ये हलीम है, ये फरोतन है, ये खुदा का बंदा है, खुदा की बंदी है। दिलो जान से खुदावंद की तरफ लौट आएं, दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ दें। अजीजो, हम शुक्र करें कि आज पाखरू इस शिद्दत के साथ काम कर रहा दुनिया में कि हम उस तक पहुंच सकते हैं, वो हम तक आ सकता है। जरा गौर करें जरा आज अपनी हालत पर, दावत दें अपने आप को दावत दें कि मिस्टर जफर गिल, अपने आप को देख, अपने आप को परख, दूसरे की तरफ मत देख तो अंदाजा हो जाएगा। जब अंदाजा हो जाएगा तो खुद बहुत बुरी बातें, बुरे अमल, बुरी सोच, बुरे ख्याल खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह पे पाखरू आ जाएगा, पाखरू का मसा आ जाएगा। ये जो दुनिया की दौलत इकट्ठी कर रहे हैं ना, ये किसी काम नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी ये, सिर्फ आपके अच्छे अमाल, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र यही काम आएगी। अजीजो आज खुदा बाप की ये जो गरजदार आवाज है, जाग जाग और उठ और बैठ, इसको सुन लें इस बात को। खुदा उन मुझे और आपको कह रहा है जाग, एक दफा नहीं दो दफा कह रहा है जाग जाग उठ और बैठ। हमने अक्सर देखा है कि रात को पसली पड़ने सोए होते हैं, वहीं लेटे लेटे दुआ कर लेते हैं, हम उठ नहीं सकते। क्या हम फालज ज्यादा हैं, हमारे जिस्म मर गए हैं, हम उठ के बैठ नहीं रहे? हां मर गए हैं, शैतान ने मार दिया हमें, शैतान ने हमारी सोचों को फालज ज्यादा कर दिया है, नकम्मे हो गए हम। नहीं अजीजो, यसु ने मेरी और आपकी खातिर दुख उठाए, सलीब पे चढ़ गया, मर गया और मेरी और आपकी खातिर जिंदा हो गया, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज आप मुझे और आपको कसरत की जिंदगी लेने का वक्त आ गया है, जागने का वक्त आ गया है, उठने का वक्त आ गया है, सुकून का वक्त आ गया है। अजीजो हमें दुआ करनी है खुदा से, दुआ करनी है खुदा से, क्या ये खुदावंद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, मेरी जिंदगी में भाईचारा आ जाए, मेरी जिंदगी में अमन आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया। अभी मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूंगा और जब मैं दुआ करूंगा अजीजो, तो आपके जिस्म के अंदर सर से लेके पांव के तलों तक कहीं भी कोई बीमारी है, बीमारी के जरासीम है, तो इसी वक्त पाखरू आपको छुएगा, पाखरू शफा देगा आपको इसी वक्त। हम दुआ करें अपनी सोच, अपना ख्याल हो इस तरफ, यसु की तरफ। हालेलुया। निकालें अपने जहन से हर तरह की बुरी सोच को निकालें और ध्यान इधर रखें आवाज की तरफ। हालेलुया हालेलुया। अर्जो समा के खालिक और मालिक, जिंदा परवरदिगार, आसमानी बाप, ऐ खुदावंद आपके प्यारे कदमों में हूँ इस वक्त, मैं यसु जी आपके प्यारे कदमों में हूँ और खुदावंद तेरे बच्चियां खुदावंद आपके प्यारे कदमों में है यसु जी। आज के दिन, आज के इस वक्त में खुदावंद, जहां भी कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बेबरकती है, लड़ाई झगड़ा है, ऐ खुदावंद आपका ध्यान इनकी तरफ चाहता हूं। ऐ खुदावंद जो है, जो भी मेरी ये आवाज सुन रहा है, उसके जिस्म के अंदर सर से लेके पांव के तलवों तक कहीं भी खुदावंद जिस्म के अंदर, अरे यस यस खुदावंद, यही मसा जितनों तक मेरी आवाज जा रही है, एक एक का जिस्म के जिम्मा ले ले, आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, ओ यस खुदावंद, दिमाग के अंदर सोचे परेशानियां, गर्दन में कमर में, रीढ़ की हड्डी में, टांगों में, जोड़ों में, हपों के तलवों में, यसु जी मैदे के अंदर, ओ यस खुदावंद, हाथों की उंगलियों में ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी, ऐ खुदावंद किसी को भी पोशीदा बीमारी, किसी मेरी बहन के बच्चे नहीं है, ऐ खुदावंद औलाद जैसी दौलत से महरूम है, या खुदावंद किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, यसो जी घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा है, अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है। ओ यस यस खुदावंद, बिजनेस बिजनेस, ये कौन मेरा भाई अभी मैं बिजनेस की प्लानिंग कर रहा है, मेरे खुदा ने उसकी तरफ देखा है, मेरी बहन की तरफ, तुझे बच्चे की जरूरत है, आए खुदावंद इसी वक्त इसके रहम को खोल दे। ओ यस यस खुदावंद, बिजनेस को, बिजनेस को, ओ यसु जी कमर को, रीढ़ की हड्डी को, टांगों को, हाथों को, पांव के तलवों को, कैंसर को यसु के नाम से हुक्म देता हूं, इसी वक्त हुक्म देता हूं कैंसर को, ब्लड प्रेशर को, शुगर की बीमारी, जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द को हुक्म दे रहा हूं, छोड़ो छोड़ो इसी वक्त इस जिस्म को, गंदे गंदे ख्यालात, बुरी सोचें इसी वक्त जहन को छोड़ो। हालेलुया हालेलुया। देखें मेरी बहन मेरे भाई जो भी दुआ को सुन रहे, देखें देखें अपना जिस्म, देखें अपना जिस्म, देखें जहन, देखें सोच ख्याल। ओ यस खुदावंद, पाखरू का मसा आपको छू रहा है, शफा दे रहा है, बरकत आ रही है, बरकत यस खुदावंद, यही बरकत, दरवाजे खुल जाए, दरवाजे खुल जाए इसी वक्त बरकत के, मसा के, कुव्वत के रव। ओ यस यस खुदावंद, और मसा। ओ यस मेरी बहन मेरी बहन मेरे भाई, अपनी कमर को देखें, खुदावन ने आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी को छू लिया है, गर्दन को, कंधे को, दांत का दर्द, आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, इसी वक्त बसम हो जाए, बसम हो जाए मेरे यसु के नाम से, छोड़ो छोड़ो इसी वक्त जादू जादू, ये खुदावन जिसका भी जादू नजर आ रहा है शैतानी कुव्वत का, अरे खुदावन ये जादू तावीज नजर आ रहे हैं, अरे खुदावन काम की बंदिश है, बच्चों की बंदिश है जादू के जरिए, ना इत्तफाकी मियां बीवी में, अरे खुदावन घरों के घर उजाड़ दिए इस जादू ने, इसी वक्त इस जादू को, तावीज को हुक्म दे रहा हूं यसु के नाम से, खत्म हो जाओ, छोड़ो इस जिस्म को यसु के नाम से, छोड़ो इसी वक्त। हालेलुया हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई देखें अपने जिस्म देखें, शफा हो रही है, शफा हो गई है, हो गई है, हो गई है, यस यस खुदावंद, यही मसा, यही कुव्वत और ताकत किचन के अंदर मांगता हूं, हर तरह की बेबरकती खत्म हो जाए, इसे वक्त बेबरकती खत्म हो जाए, यस यस यस, इसे वक्त खत्म हो जाए यसु के नाम से, आमीन आमीन। मेरी बहन मेरे भाई आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें, देखें अपने जिस्म के अंदर, अपने जिस्म के अंदर देखें, जहां भी बीमारी थी, शैतानी कुव्वत थी, जादू था, यसु ने खत्म कर दिया, देखें देखें अपने जिस्म को, यस खुदावंद यही मसा, यही कुव्वत और शोले एक एक जिस्म और हड्डी के अंदर मांगता हूं, आमीन आमीन। मेरी बहन मेरे भाई आंखें खोलें, देखें अपना जिस्म, ओ यस यस आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबको बड़ा मसा करे, बड़ी कुव्वत और ताकत दे आप सबको खुदावंद। अजीजो आज के कलाम ने मेरी और आपकी जिंदगी तब्दील की है, आज की दुआ ने आपकी बहुत सी मुश्किलों को हल कर दिया, रूह और सच्चाई से खुदावंद के पास आ जाएं और ले लें वो जो इनामात, वो गिफ्ट जो रुके हुए हैं यसु मसीह के।